آپ میں سے کتنے ہیں جو بالکل ابھی جو سدا خوش رہتے ہیں؟ کتنے ہیں ہاتھ اٹھائیں جو کبھی دکھی نہیں ہوتے ہیں؟ ایسا کوئی تو ہونا چاہیے، پیچھے پیچھے ایک ہیں شاید. ایسا ایسا پاسبل ہے؟ از اٹ پاسبل ٹو لیڈ اے ٹینشن فری لائف اور اسٹریس فری لائف؟ از اٹ پاسبل کہ اسٹریس ذرا بھی نہیں ہو؟ ہاں بتائیں. ہاں جی کیسے؟ واٹ از دا میتھڈ؟ از اٹ پاسبل ٹو اوائڈ نیگیٹو تھاٹس ٹوٹلی؟ بزی ان واٹ؟ ہاں جی اور کوئی بتائیں؟ ٹھیک، بہت اچھا بتایا ہم نے. اور کیا میتھڈ یہاں کے بتا سکتے ہو؟ تار لمبی نہیں ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں. اچھا بتائیں کوئی بات. ہاں جی اینی ون ایلس؟ اچھا تناؤ کہتے کس کو؟ واٹ از اسٹریس؟ اسٹریس کسے کہتے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسٹریس؟ اور کوئی بتائیں؟ ویکتی ابھی ویکتی کی سوتنترتا چھین لی جائے تو اس کو اسٹریس ہو جاتا ہے. اور کوئی نہیں؟ ٹھیک بتا رہے ہیں، سبھی ٹھیک بتا رہے ہیں. اور بتائیں؟ ہماری اچھا کے وروت کارے ہو تو اسٹریس ہو جاتی. ٹھیک بات ہے. اور اسٹریس تو سبھی کو ہوتی ہے نا، ایسے تو کوئی نہیں اس کو اسٹریس نہیں ہوتی، سبھی کو ہوتی ہے، سبھی انوبھوی تو ہے نا. تو بتائیں آپ. ہاں کام کا پریشر ہو تو ہوتی ہے. اور سدھار جی آپ بتائیں؟ شریر بیمار ہو گیا تو بھی اسٹریس ہوتی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اور بچے بات نہیں مانتے ہوں تو، ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہو تو بھی اسٹریس ہوتی ہے. اور کوئی بتائیں؟ بہنیں بتائیں، پیچھے بہنیں بیٹھی ہیں، بتائیں آپ کو کیسے اسٹریس ہوتی ہے؟ پیچھے بہنیں بیٹھی نا، کچھ وہ بتائیں. بہنوں کو بھی اسٹریس ہوتی ہے؟ اسٹریس فری رہتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بولا؟ وانچت پھل نہیں ملتا تو اسٹریس ہوتی ہے. اور آپ لوگ اسٹریس کیسے مینج؟ جب آپ کو اسٹریس ہوتی ہے، آپ پہ ایکسپیکٹیشن نہیں پوری ہوتی ہیں، یا آپ وانچت پھل نہیں ملتا ہے، یا بچے کہہ رہے ہیں، تو آپ کیسے مینج کرتے ہیں اسٹریس کو؟ ڈیزائر کنٹرول کرتے ہیں. اور کیسے مینج کرتے ہیں؟ ہاں جی پلاننگ کرتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں. اگنور کر کے بھی اسٹریس کم کر لیتے ہیں، گیمس کھیل کے بھی اسٹریس دور کر سکتے ہیں. رائٹ، دیکھیے میں آپ سے آج کچھ باتیں جو کروں گا وہ کچھ تو سائنس پہ بیسڈ ہوں گی اور کچھ اسپرچولیٹی پہ بیسڈ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر آپ انٹریکٹیو ہوگا، مطلب آپ چاہیں تو جب چاہیں مجھے روک سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. رائٹ، اور بیسکلی میرا ایم آپ کو لیکچر دینا نہیں ہے، بٹ آپ سے انٹریکٹ کر کے سو دیٹ آپ کی پرابلم ریئلٹی میں سالو ہو. دیٹ از دی ایم آف دس ٹاک. اچھا آپ سبھی ہیلدی ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے، نہ من کی نہ تن کی؟ من بھی ہیلدی، تن بھی ہیلدی، ایسا ہاتھ اٹھا جس کی کوئی بیماری نہ ہو. جس کو من کی بھی کوئی بیماری نہیں، تن کی بھی کوئی بیماری نہیں. من کی بیماری بتا دوں پہلے میں کون کون سی ہوتی ہے؟ چنتا کرنا، غصہ کرنا، اداس ہونا، جلدی بازی کرنا، کسی کو کرٹیسائز کرنا، سینیسزم کہتے ہیں، ہاسٹلٹی کسی کے پرتی، ریونج فل بہیویئر رکھنا، ڈر لگنا، یہ من کی بیماری مکھیا. ڈپریشن، نیند نہ آنا پراپر، سمے پر نیند نہ آ پانا، یہ مکھیا من کی بیماریاں ہیں نا. جیسے اور تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. ایسے تن کی بیماریاں ہیں کون کون سی؟ بلڈ پریشر ہونا، ڈائبٹیز ہونا، موٹاپا ہونا، ہائی کولیسٹرول ہونا، है ना, और एसिडिटी होना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, कोई नाक कान गले की प्रॉब्लम हो, हड्डियों की तकलीफ हो, हड्डियां कमजोर हो या हड्डियों में दर्द होता हो किसी भी हड्डी में बॉडी में, तो इनमें से कोई ऐसा है जिसको कोई बीमारी ना हो बिल्कुल? वैसे पीछे एक बार सर्वे हुआ था, जो चार मेजर सिटीज है ना भारत की, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता एंड मुंबई, है ना, चार मेजर कॉस्मोपोलिटन सिटीज कहलाती है ना, तो ये जो है चार जो हमारी मेट्रोज हैं इनमें सर्वे किया गया था एडल्ट्स पे, तो उसमें पाया गया कि 100 लोगों फिजिकल बॉडी की डिजीज के बारे में था कि लगभग 40% लोग तो मोटे हैं, ओबीज हैं, ओवरवेट कहें, और 15% को हार्ट की बीमारी है, 30% को हाई ब्लड प्रेशर है, और 25% को एसिडिटी, जीआरडी कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स होता रहता है इसोफेगस के अंदर, और 15% को हार्ट की बीमारी है, 10% को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी से कहते हैं ना, और 20% को हड्डियों की बीमारियां हैं, 10% को स्किन की बीमारियां हैं, 10% को नाक कान गले की और आंखों की बीमारियां हैं, लगभग 10% को किसी ना एट ए गिवन टाइम ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ना कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, चाहे गले का हो, चाहे चेस्ट, चाहे गले का हो, चाहे यूरिन में हो, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बॉडी में है। तो इस तरह से उन्होंने मतलब इस पे देखा था, लगभग 100 लोगों को 200 बीमारियां थी, कितने थी 100 लोगों को 200, ज्यादा तो नहीं ना, मतलब एवरेज हर एक के पास दो बीमारी होती है ना, नहीं 100 लोगों को 200 बीमारियां, मतलब एवरेज हर एक को दो है, अगर आप भी अपने अंदर देखेंगे ना तो आपको दो नजर आ जाएंगे, हर एक देखे ना अपने अंदर तो दो नजर आ जाएंगे आपको, दमे की सांस की तकलीफें 10% लोगों को लगभग है ना, तो इस तरह से अगर देखें तो काफी काफी सारी बीमारी तो कितनी है कि अनगिनत है, तो मैं मोटी मोटी जो बीमारियां लगभग 10-12 बीमारियों के मैंने नाम आपको गिनाए वो बीमारियों की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। और मन की बीमारी तो हरेक को, 4-5 तो हरेक को है, प्रेशर में रहते, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपैरिजन, कंपटीशन है ना, ये भी तो बीमारी है, चिंता है ना, गुस्सा करना, नहीं डर, फियर, और डिप्रेशन बताया, 10% लोगों को डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन आज स्पेशली बच्चों को आज ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसमें डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, आईएएस करने वालों को भी, आईएएस होने के बाद भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो 10% को नींद नहीं आती है ऐसे, तो ये आज की स्टेटस है, राइट। चलिए अब हम आपसे थोड़ा आगे बात करते हुए, आज की जो 95% बीमारियां हैं बॉडी की वो स्ट्रेस रिलेटेड है, तनाव से पैदा होती है, इनको साइकोसोमेटिक भी कहते हैं, साइकोसोमेटिक मतलब साइकी मीन्स माइंड और सोमा मीन्स बॉडी, राइट, अर्थात पहले मन में आती है फिर बॉडी में आती है, लगभग वैसे 100% बीमारियां ही साइकोसोमेटिक है, इवन एक्सीडेंट भी होते हैं वो भी क्या है, पहले मन में होता है फिर बॉडी में, तो मन का, अगर मन आपके अटेंशन कहीं है, आप ड्राइव कहीं कर रहे हैं, मोबाइल पे फोन करके किसी बात कर रहे हैं, कोई फीलिंग भावना में आप अटेंशन गुस्सा कर लेते हैं टेलीफोन पे, तो आपका अटेंशन खराब हो जाता है, आप एक्सीडेंट कर देते हैं, तो मतलब, और या मन में टेलीफोन में नहीं भी कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं दिमाग में, किसी घर में किसी से झगड़ा हुआ, कोई किसी ने डांट लगा दी, उस फीलिंग में आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब इवन जुखाम होता है ना, आपको जुखाम होना भी, डायरिया होना भी, ये भी स्ट्रेस रिलेटेड है, जब आप टेंशन में रहते हैं तो आपका जो साइको इम्यूनो, साइको न्यूरो ह्यूमरल एंड साइको न्यूरो इम्यूनो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स, जितने नेगेटिव थॉट्स और बेस्ट थॉट्स आप करते हैं वो थॉट्स आपकी इम्यून सिस्टम को खराब कर देते हैं, आपकी जो फाइटिंग पावर है बॉडी की, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है उसको खत्म कर देते हैं, तो नॉर्मल जो कीटाणु है आपके नाक में रहने वाले, गले में रहने वाले, आपकी स्किन पे रहने वाले कीटाणु नॉर्मल, वो भी आपको पैथोजेनिक हो जाते हैं, अर्थात वो आपको नुकसान करते हैं, तो मन का कितना बड़ा रोल है लगभग हर बीमारी में। जुखाम होने भी बताया मैंने, जुखाम भी जो होता बार बार उसके पीछे भी आपका मन है। मन आप तनाव कब महसूस करते हैं? जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, वेन वी फील इनजस्टिस वी फील पॉइजनस स्ट्रेस। जब हम देखते हैं कि हमारे साथ बार बार अन्याय हो रहा है, कोई बात होती है हमें हमारा हक नहीं मिलता, हमको हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमें लोगों ने इग्नोर कर दिया, तो एक तरह की बहुत जहरीली स्ट्रेस आप तनाव महसूस करते हैं। वेन वी रिपीटेडली फेस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और फेलियर इन लाइफ, हमने इतना अच्छा कार्य करते हैं फिर भी लोग हमें उल्टा सीधा बोल देते हैं और बार बार हम फेल होते हैं, पूरी एफर्ट करने के बाद भी हम लोग फेल हो जाते हैं अपने अटेम्प्ट में लाइफ का जो हम करना चाहते हैं। किन लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होती है? जो लोग सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी अनटवर्ड होने के बाद थोड़ा सा जो ज्यादा सोचने लगते हैं, उनकी सोचने की ज्यादा आदत होती है, सेंसिटिव इन नेचर, तो ऐसे लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होती है। जो लोग भावुक होते हैं, इमोशनल, थोड़ी बात में आंसू आ जाएंगे, थोड़ी बात में अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाते, कह नहीं पाते, तो वो एकदम स्ट्रेस में, वो उनको जल्दी स्ट्रेस होती है। इंटेलेक्चुअल लोगों को भी ज्यादा स्ट्रेस, जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना उनको भी ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो बुद्धिमान नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए है जी? नहीं, बुद्धिमान लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होती है, ज्यादा तनाव होती है। आप बताएं, आप खुद भी तो बुद्धिमान है ना, आप बताइए क्यों स्ट्रेस में आते हैं? हाँ, इंटेलेक्चुअल को ज्यादा ईगो होती है, जिसके अंदर ज्यादा मैपन होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रेस में आता है ना। तो और जो मेरापन, जो ज्यादा मेरापन में, जो सेंसिटिव और इमोशनल कौन होते हैं, उनके अंदर ज्यादा अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ, अपने धंधे के साथ, जो अटैचमेंट ज्यादा फंसे रहते हैं उसके अंदर, मतलब दे फील दैट टू मच, उसके बगैर वो काम नहीं चलेगा, या वो बच्चा है या युगल वाइफ है या कोई भी दोस्त है, वो उसको थोड़ी देर के छोड़ देंगे या बात नहीं करेंगे, आज सुबह से बात नहीं हुई तो बस वो उनको विचार चलने शुरू हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे, तो वो ऐसे लोगों को ज्यादा स्ट्रेस है, थोड़ी थोड़ी बात पे स्ट्रेस होती है। तो ये अटैचमेंट के कारण दो बातें, और ये इंटेलेक्चुअल मैपन ईगो की वजह से, राइट? क्योंकि मैं अपने अंदर उनके सूक्ष्म अभिमान रहता है, ईगो रहती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी बात पे जल्दी हर्ट हो जाते हैं। फिर क्रिटिकल लोग, कुछ लोग क्रिटिकल होते हैं, उनके नेचर है दूसरों को क्रिटिसाइज करना, जिसे हम सिनिकल भी कहते हैं। सिनिकल मीन्स फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में दोष निकालने की आदत। तो उनको भी जरा सा कुछ देखा कि ऊपर नीचे हुआ तो तुरंत वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, तो ऐसे लोगों को भी स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाती है। अब ये तो हमने कहा ऐसे लोगों को, मतलब स्ट्रेस किन लोगों को होती है, हम लोग कब स्ट्रेस महसूस करते हैं, पर व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव है क्या चीज, तनाव क्या चीज है? हाँ, चलो इसको हम और थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं। स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू चेंज। स्ट्रेस क्या चीज है? इसे देखिए, जीवन का नियम क्या है, लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज, परिवर्तन जीवन का नियम है। नहीं, सुबह कैसा मौसम होता है, थोड़ी देर में मौसम गर्मी हो जाती है, फिर शाम को मौसम बदल जाता है। नहीं, हम कभी बचपन में थे कितने यंग थे, कितने एक्टिव थे, फिर जवानी आई, फिर अब बुढ़ापा आ रहा है, तो परिवर्तन हो नहीं हो रहा। अभी हम बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, अचानक कुछ हो जाएगा, अचानक चेस्ट पेन हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, अचानक कुछ भी हो सकता, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। नहीं, एक व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार से बात करता है, थोड़ी देर में उससे झगड़ा हो जाता है, थोड़ी सी किसी बात पे तू तू में शुरू हो सकती है। नहीं, तो जो व्यक्ति ने जब कभी जीवन में मुझे कुछ गलत बोला ही नहीं आज तक, प्यार हमेशा प्यार से किया, आज वो अचानक मुझसे नाराज हो गया। सदा कोई आदमी आपके साथ प्यार से रह सकता है क्या? आप सदा किसी के साथ प्यार से बोल सकते हैं क्या? तो लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज, जीवन का नियम ही परिवर्तन है। इस परिवर्तन और जब हम इस परिवर्तन को रिएक्शन करते हैं, इसने ऐसा क्यों हुआ, जैसे आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स आपको नमस्ते करते हैं, पीएन है आपका, आपके नीचे क्लर्क है, आप ऑफिस में गए और उसने आपको विश किया गुड मॉर्निंग सर, आज नहीं किया तो क्या होगा, आपको तनाव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो सकता हो कहीं खोया हो, उसका विचार कहीं खोया हो, और उसने आज आपको देख के विश नहीं किया तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो रोज करता था आज उसने, आज आप उसने गुड मॉर्निंग नहीं की, आज पता नहीं क्या बात हुई, क्यों क्यों इसने मेरे को पूछा, मेरे तो देखा नहीं, इसी बात की स्ट्रेस हो जाएगी। जो कुछ भी रूटीन हो रहा है, मतलब जो कुछ भी आप घर से बाहर निकले, अचानक बरसात शुरू हो गई, आप रेशन कर ली तो टेंशन हो जाएगी ना, मतलब कुछ भी अनटवर्ड हो गया, अनरिएक्शन, मतलब कुछ उसको रिएक्शन करना। इंसान के दो पार्ट है ब्रेन के, एक हायर ब्रेन है, ये दो राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारा हायर ब्रेन है और उसके नीचे हमारा लोअर ब्रेन है। जो हमारा लोअर ब्रेन है वो रिएक्शन करता है, वो जानवरों में डेवलप्ड होता है, पशुओं में डेवलप्ड होता है, पशुओं में ये हायर ब्रेन डेवलप नहीं है। उस हायर ब्रेन में क्या पावर है, हायर ब्रेन में पावर है, इसे हम कहते हैं एशिया की पावर है। मैं शायद डायग्राम से समझाऊं तो आपको समझ अच्छा आएगा। ये हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, हमारा जो राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन होता है, कन्वेंशनल ब्रेन होता है कि कोई चीज ऊपर से नीचे, ऊपर से टूटी अगर पेड़ से तो नीचे गिरेगी ऊपर जाएगी, फिर लॉजिक ये कहता है कि नीचे ही जाएगी, राइट। तो ये हमारा राइट लेफ्ट ब्रेन हमारा ऐसा बोलता है, राइट ब्रेन कहता नहीं ऊपर भी जा सकती है, इमोशनल होता है, भावुक होता है। तो ये जो है इसके नीचे दोनों ब्रेन जो है इसमें डिफरेंट सेंटर्स हैं, जैसे यहां पे हमारे मेमोरीज हैं, है ना, यहां पर हमारे मोटर सेंटर है, जो हमारी मोटर एक्टिविटी, अगर हमारी लेफ्ट साइड की मोटर एक्टिविटी राइट साइड से कंट्रोल होती है, मतलब हाथ ऊपर नीचे करना, हाथों के मूवमेंट, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होना, उसके पीछे सेंसिटिव एरिया है, सेंसरी एरिया, हमारे जो पूरी सेंसेशन है पूरी बॉडी पर, आधी बॉडी पर, वो यहां से कंट्रोल होती है। ऐसे इस लेफ्ट साइड की राइट साइड से, राइट साइड की लेफ्ट साइड से कंट्रोल होती है। हमारा आवाज का सेंटर है, यहां पर वोकल एरिया है, यहां पे विजुअल एरिया, सॉरी हमारे ऑडिटरी एरिया है, पीछे विजुअल एरिया, आंखों का केंद्र पीछे है, ऐसे ही मतलब हर चीज का केंद्र है, इमोशंस का है, एटीट्यूड्स का है, मेमोरीज मैंने बताया, तो ये सारे हर चीज का केंद्र है। और उसमें ब्लड क्लॉट चला जाए तो, जैसे इधर ब्लड क्लॉट चला गया तो क्या होगा, पूरी आधी बॉडी लेफ्ट साइड की पैरालाइज हो जाएगी, इधर चला गया तो राइट साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाए। तो मतलब एक एक ऐसे, अगर यहां भी राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड में चला गया उस एरिया में, ब्रोकास एरिया में, तो क्या होगा, आवाज चली जाएगी। आपने सुन देखा होगा ना, कई बार स्ट्रोक होता है तो क्या होता है, आधी बॉडी भी पैरालाइज हो गई, फेस भी पैरालाइज हो गया और आवाज भी चली गई, है ना। जबकि इस तरफ लौट जाता है तो बॉडी लेफ्ट साइड की पैरालाइज होती है किंतु उसमें आवाज नहीं जाती, राइट साइड की अगर इसमें लेफ्ट साइड में प्लॉट गया तो राइट साइड की बॉडी पैरालाइज और सांस में आवाज चली जाती है, धीरे धीरे वापस आ जाती है, कई बार प्लॉट डिजॉल्व होने के बाद कई बार नहीं भी आती है ना। तो ये हमारे दो ब्रेन के सेंटर्स हैं, और फिर इसके नीचे जो है हमारा एक ब्रेन का सेंटर है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये मतलब ये हमारा ये दोनों ब्रेन को यहां पर इसकी एनकोडिंग कहें या डीकोडिंग, दोनों ब्रेन को फिर कंट्रोल सेंटर यहां पर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो इसमें एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है, जैसे थर्मोस्टेट में ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा कुछ भी होता रहे, बाहर चाहे -10 हो चाहे 50 हो, बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, सर्दी में हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है क्या, बाहर 10 होता है हमारा टेम्परेचर कितना रहता है, 98.4 ही निकलता है ना, कम हो जाता है। और गर्मी में पार 45 होता है हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है, 98.4 ही आएगा ना, कम ज्यादा नहीं होता, एक्यूरेट 98.4 रहता है। इसी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी है, एक घड़ी भी लगी है, उसमें सोने का समय, उठने का समय, नाश्ता करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, जो बेस्ट टाइम है हमारा एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी में ना जिसमें हम ज्यादा कम काम में, कम एफर्ट में ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। उसके वो टाइम भी उसके अंदर है, हर चीज का टाइम उसके अंदर है, मेडिटेशन करने का समय है, वॉकिंग करने का समय है। अगर उसको टाइम फॉलो, वो टाइम हम फॉलो करते हैं, उस क्लॉक को, उस घड़ी को फॉलो करते हैं, तो हमारा काम, हर काम एफिशिएंटली होता रहता है, हम तनाव मुक्त होकर कार्य कर सकते हैं। उस बायोलॉजिकल क्लॉक का कनेक्शन हमारे हार्मोन से है, जो डिफरेंट हार्मोन निकलते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि उसके हिसाब से, क्योंकि जैसे आप सपोज आप एक, मैं एग्जांपल देता हूं, आपने देखा टमाटर जो होते हैं, टमाटर टमाटोज होते हैं ना, टमाटो एक एक ऐसे सीजन में, सीजन में टमाटर कैसे मिलते हैं, 4-5 रुपए किलो भी मिल जाते हैं नहीं, और बिना सीजन के लो तो कितना, क्या रेट होता है टमाटर का, 40-50-60 रुपए भी होता है ना, और 50-60 रुपए वाले टमाटर की अगर सॉस बनाएंगे ना तो क्या होगा, खराब हो जाएगी, और जो 4-5 रुपए के टमाटर मिलते हैं ना जब सीजन में, उसकी सॉस बना के रखो पूरा साल चलती रहेगी। ऐसे आम का है, कच्चे आम, जब कच्चे आम आते हैं तो उसका आम अचार डाल दिए साल साल चलता रहेगा, वैसे बिना सीजन का आम लेके आप अचार डालिए तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो सीजन की वजह, सीजन जिस हर चीज का सीजन होता है, ऐसे ही हमारा इसका भी, जैसे मेडिटेशन करना सबसे सबसे बेस्ट किस समय मेडिटेशन हो सकता है ना, वॉकिंग किस समय बेस्ट हो सकती है ना, ब्रेकफास्ट का टाइम बेस्ट टाइम, उससे फूड आपका सही ढंग से डाइजेशन, फर्स्ट क्लास डाइजेशन होगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गैस नहीं बनेगी, आप गलत टाइम खाना खाएंगे आपको गैस बनेगी, दजमी शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाएगी, आपकी बाउल मूवमेंट्स इरेगुलर हो जाएंगे, है ना, ये एक दिन में नहीं होती है, लगातार जब बहुत समय तक हम इस क्लॉक को गलत तरह से यूज करते हैं, हम उसको मिसयूज करते हैं तो फिर हम बीमार होते हैं, राइट। तो ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक यहां इसी में है, और इसके नीचे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड माना मास्टर ग्लैंड है, वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से क्या, ऐसे जो हमने सोचा, मेमोरी सेंटर है हमारा, देखा, विजुअल सेंटर है, सुना है ना, कानों से सुना किंतु यहां वो गया ना, कान ऑडिटरी एरिया में गया ना, आंखों से देखा किंतु यहां गया ना, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन अंदर होती है और उसका इफेक्ट फिर हाइपोथैलेमस पे आता है, और फिर हाइपोथैलेमस में वो जो विचार, जो भी विचार, अल्टीमेटली एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू थॉट, हर चीज का कोई मेमोरी से भी कोई विचार, मेमोरी से फाइल खुलेगी किसका, अल्टीमेट रिएक्शन इफेक्ट क्या होगा बॉडी के ऊपर, विचार में आएगा ना, विचार में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमने खाना खाया, अल्टीमेट वो उससे एनर्जी कैसे मिलेगी हमको, हमने चपाती खाई, पराठा खाया, जो कुछ खाया, अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, राइट, और ग्लूकोज विल गिव अस एनर्जी, इजंट इट, सेम वे जो कुछ भी हमने, जो भी देखा सुना, किसी ने छुआ, किसी ने कुछ किया, कोई फीलिंग आई, अल्टीमेटली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू थॉट, एंड दैट थॉट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल, एक केमिकल बन जाता है जिसको हम न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं, और वो एक सेकंड से भी कम समय में सारी बॉडी में हर कोशिका पे पहुंच जाता है। हमारी बॉडी में 80,000 बिलियन सेल्स हैं, लगभग 80 ट्रिलियन सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी है कितनी कोशिकाओं से बनी है, 80,000 बिलियन कोशिकाओं से लगभग बनी हुई है, ठीक है, और 8 ऑर्गन सिस्टम से सारी बॉडी डिवाइडेड है, जैसे एक ब्रेन का सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम कहेंगे इसको, ठीक है, इसी तरह से इम्यून सिस्टम हो गया हमारा एक, उसमें 5 सेंसेस में हमारी आंख नाक कान मुख और त्वचा, स्किन ऑल ओवर द बॉडी, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवेस्कुलर हार्ट उसमें आ गया, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर लिवर और आंतें आ गई, फिर हमारा हार्मोनल सिस्टम हो गया, हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड इसके पीछे ही होती है, तो ऐसे फिर हमारी थायराइड है, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनेड्स हैं, तो ये हमारा हार्मोन सिस्टम, इनसे हार्मोन निकलते हैं, जिससे हमारे अंदर 80,000 बिलियन कोशिकाएं वापस में हार्मोनियसली काम कर सकती हैं, राइट। तो इस तरह से फिर हमारा उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारा, अगर इंसान में हड्डियां ना होती आदमी कैसा होता बताओ, इंसान में हड्डियां ना होती आदमी कैसा होता, बलून होता, शक्ल होती है हमारी, हम ऐसे चलते, हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, और अगर मान लो हड्डियां होती कि तो जोड़ ना होते तो क्या होता, ज्वाइंट ना होते तो कैसा होता, मान लो हाथ भी ऐसे ऐसे होते सीधे सीधे तो क्या खाना खा सकते थे, कुछ कर सकते थे, तो ज्वाइंट
मसल्स सारे बोन्स हैं, फिर ज्वाइंट्स हैं, और ज्वाइंट को चलाने के लिए मसल्स हैं। मसल्स चलाते हैं, पुली की तरह कार्य करती है ना, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, है ना। तो वो उसके सहारे फिर हम लोग अपने हाथ को यूज कर सकते हैं, पैरों को यूज कर सकते हैं, और कमर के भी ज्वाइंट्स हैं, गर्दन में भी ज्वाइंट्स हैं। तो मतलब इस तरह से हमारी जो है ये टोटल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। और फिर लास्ट सिस्टम जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, हर कोशिका में एक सेकंड में लगभग 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं। हर सेल में एक सेकंड में कितनी रिएक्शंस होती हैं? ज्यादा होती हैं क्या? एक सेल में, हमारी बॉडी में कितनी कितनी सेल्स हैं? 80,000 बिलियन सेल्स हैं। और एक सेल में कितने रिएक्शन हो रहे हैं एक सेकंड में? कितनी रिएक्शंस हो रही है बोलो ना, कितनी रिएक्शन? 100,000 रिएक्शंस होती हैं, राइट? और इतनी रिएक्शंस होती है एक सेकंड में, और उसमें टॉक्सिन्स बहुत सारे बनते होंगे। देखो आप किचन में जब खाना बनाते हैं, हमारी बहनें किचन में खाना कितना कितनी एक घंटा खाना बनाते हैं, तो किचन में कितनी कितनी गंदी हो जाती है। किचन गंदी हो जाती है, अच्छी हो जाती है? हो जाती है ना, फिर सफाई भी करनी पड़ती। तो एक सेकंड में वो टॉक्सिन इतनी रिएक्शन हो भी जाती है और उसके टॉक्सिन भी वॉश हो जाते हैं। ये मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। और हमारी किडनी एक घंटे में पूरा ब्लड साफ कर देती है। पूरे ब्लड की सफाई हर घंटे होती है। किडनी खराब हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस कराना पड़ेगा, नहीं करूं, खून की सफाई करते हैं ना, आर्टिफिशियली खून की सफाई करते हैं। तो हमारी बॉडी हर घंटे में एक बार हीमोडायलिसिस करती है। तो हमारा 24 घंटे में 24 बार खून साफ होता है, राइट? एक बार डायलिसिस कितने पैसे लगते हैं पता है आपको? 2,000 के रुपए आसपास लगते हैं, 2,500 के आसपास लगता है ना। तो कितने कितने पैसे काम करती है हमारी किडनी रोज? हमारे लिए 50,000 रुपये सैलरी देते हो किडनी को आप? देते हैं? तो कितना वंडरफुल काम करती है ना। अपने आप में हमारी बॉडी एकदम कंप्लीट यूनिट है ना। इंसान जो है कंप्लीट यूनिट है, उसमें सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उसमें। आप सिर्फ अपने विचारों पर आधारित करके अपने जीवन को बिना दवाइयों को भी ठीक कर सकते हो। कंप्लीट सिस्टम है। हम गोलियां भी जो खाते हैं ना, गोलियां बाहर से खाते हैं, वो गोलियां भी अंदर जाके उस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, आपके अपने सिस्टम को, जो आप अपने विचारों से नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर इतने नेगेटिव विचार घुस गए जिसके कारण से आप वो बस आदत पड़ गई, संस्कार में आदत पड़ गई उसी तरह की सोचने की, वही सोचने की, वही देखने की, वही खाने की, वही बोलने की, वही सुनने की। आप उसको बदलना नहीं चाहते, और उसको ना बदलने की वजह से आपको मेडिसिन की मदद लेनी पड़ती। अगर आप अपने विचारों को खुद मॉनिटर करना सीख जाएं, खुद कंट्रोल करना सीख जाएं, जैसे स्ट्रेस क्या बताई आपने खुद ना कहा, हम अपने विचार कंट्रोल कर दें, हम वैसे कर दें, हम अपने आप को ठीक टाइम पे बिजी कर दें। कि तो बिजी कर पाते हैं क्या? जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बिजी कर पाते हैं क्या? वही प्रॉब्लम बिजी कर देती है, नहीं चाहते भी घुस जाती है, अंदर घुस जाती है, ऐसा घुसती है कि आपको निकाल नहीं सकते आप उसको, नहीं? अब बच्चा आपको कुछ बोल दे या कोई आपका दोस्त कुछ आपको गलत बोल दे, फिर आप कितनी कोशिश कर लो मन ध्यान लगाने की दूसरे काम में, लगेगा नहीं लगेगा? उसने ऐसा क्यों बोला? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? उसने मेरे को धोखा क्यों दिया? नहीं, अब क्यों क्यों में फंस गए, नहीं फंस गए, निकल पाते हैं उससे? फिर नींद, इतने विचार करेंगे नींद भी नहीं आएगी, फिर नींद नहीं आएगी तो फिर क्या, गोली खा के सोएंगे? गोली क्यों लेनी पड़ी? अगर आप अपने विचार को वही कंट्रोल करते तो नींद गोली लेनी पड़ती है आपको? नहीं लेनी पड़ती, कंट्रोल नहीं हो रहा इसलिए आपको गोली लेनी पड़ी, राइट? तो बेसिकली जो है ये जो है, फिर ये हमारे अंदर जो वो केमिकल्स जो है, फिर यहां से हार्मोन निकलते हैं। लगभग 9 हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, 8 पिट्यूटरी से निकलते हैं, और 1 पीनियल ग्लैंड से निकलता है। और नीचे इसके नीचे हमारा लोअर ब्रेन है। और इससे हमारी जो है, इससे हमारी नर्म 5 कर्मेंद्रियां ना, हमारी आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, इनसे हमारी पहली नर्व सूंघने की नर्व होती है नाक से, दूसरी देखने की, थर्ड, फोर्थ और सिक्स नर्व हमारी आंखों को घुमाने के लिए होती है, फिफ्थ नर्व हमारे चेहरे पे सेंसेशंस के लिए होती है, सातवीं नर्व हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, एक्सप्रेशन माना
अच्छा भाव, बुरा भाव, मुस्कुराने का, उदासी का, जो भी भाव हम एक्सप्रेस करते हैं वो सातवीं नर्व के द्वारा करते हैं। आठवीं नर्व हमारी सुनने की नर्व है, नौवीं नर्व हमारी बोलने की नर्व है, दसवीं नर्व खाना हमने चबा लिया तो निगलने के लिए वो चाहिए दसवीं नर्व, ठीक है। ग्यारहवीं नर्व जो है वो हमारी जो हमारी मसल है ना, ये स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड पीछे एक मसल होती है उसके लिए है, जैसे आपकी इमरजेंसी ब्रेक है, जैसे अगर आप सपोज खाना खा रहे हैं, खाना मुंह में भरा हुआ है और आपको कोई कहे आप और लेंगे क्या, तो कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं तभी आप, नहीं बोल सकते, पर आप ये कर सकते हैं हाँ जी और चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये इमरजेंसी ब्रेक है जैसे ना, हाँ जी और ना जी करने की नर्व है ना, इमरजेंसी में हाँ जी या ना जी, हैंड ब्रेक कह सकते हैं, ठीक है। और फिर बारहवीं नर्व जीभ की नर्व है, तो ये हमारी इस तरह से हमारी जो कर्णेंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहती हैं, और ये जो है इसी हाइपोथैलेमस से एक गर्म तार और एक ठंडी तार निकलती है, गर्म तार माना सिंपैथेटिक सिस्टम। जब भी आप डेंजर महसूस करते हैं तो आपको एकदम हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पुतली चीजें छोटी हो जाएगी, दूर तक दिखाई देगा, लड़ने के लिए मोड में एकदम फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाता है, ठीक, आर्टरी सिकुड़ जाएंगी, तो मतलब खतरा है, कुछ अनटवर्ड हो गया, आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं ना? तो और जब रिलैक्स सब कुछ ठीक है तो माना पैरासिंपेथेटिक सिस्टम रिलैक्सड है, हार्ट रेट कम हो जाएगी वापस, बीपी कम हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, आर्टरीज खुल जाएंगी, खून जब टेंशन में तो खून गाढ़ा हो जाता है, जब वो होगा जब आपको रिलैक्स है तो खून पतला हो जाएगा वापस, समझ गए आप। तो ये हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है। तो हमारे ब्रेन में एक कौन सी पावर है, हायर ब्रेन में, ये हमारा हायर ब्रेन है, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा हायर ब्रेन है, ये सिर्फ इंसानों में ही डेवलप्ड है, पशुओं में नहीं डेवलप्ड होता, और ये हमारा लोअर ब्रेन है, ये जानवरों में, जैसे जानवरों में होता है ऐसे हमारे अंदर भी है। हर एक इंसान में जो पावर है सिर्फ इंसानों में है और किसी जानवर किसी में नहीं है, वो एशिया की पावर है, एशिया, एशिया माना ए फॉर एनालिसिस, मतलब कोई बात का हम विश्लेषण कर सकते हैं, जमा गुना घटा बढ़ा कर सकते हैं ना, तो वो पावर जो है सिर्फ कोई भी सिचुएशन हो इंसान उसको एनालाइज कर सकता है, इंसान का बच्चा भी उसको एनालाइज कर सकता है, जानवर उसको एनालाइज नहीं कर सकता, उसको ट्रेन कर सकते हैं हर काम के लिए, आप उसको आग में से कूदना सिखा दो, एक गोल रिंग से घूमना सिखा दो, जिससे सिखा दो वैसे सीख जाएगा, बट ही कैनॉट डू एनीथिंग न्यू, कुछ नया नहीं कर सकता, जो सिखा दो उतना ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर आप एक तोते को बोलना सिखा दो 2 + 2 = 4 तो बोल देगा 2 + 2 = 4, उसको 2 + 2 = 5 तो क्या बोलेगा 2 + 2 = 5, वो ये नहीं बोलेगा आपने गलत बोला। अपने बच्चे को बोलो, केजी वाले बच्चे को बोलो, क्या करेगा, क्या बोलेगा वो, पापा आपको इतना भी नहीं आता है, मेरी मैडम ने कहा 2 + 2 = 5 नहीं होता है, 4 होता है, नहीं। तो बच्चा जो है वो उसके अंदर एनालिसिस पावर है, उस जानवर में वो एनालिसिस पावर नहीं है, वो विश्लेषण नहीं कर सकता है, राइट। ये इंसान में पावर है, इसको हम आईक्यू कहते हैं, जो बताया ना आपको इंटेलिजेंस, ये आईक्यू है, राइट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। फिर एफ मीन सिंथेसिस, फिर जो कुछ मैंने एनालाइज किया, विश्लेषण किया, वो क्या मेरे लिए तो ठीक है, तो क्या मेरे परिवार के लिए ठीक है, जो मेरा घर जहां पर मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं या मेरे माता पिता रहते हैं, तो उनके लिए ठीक है क्या ये, या जिस समाज में मैं रहता हूं, या जिस भी ऑफिस में मैं काम करता हूं, जिस भी मैं इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, वो उसके लिए तो नुकसानदायक तो नहीं है। ये हमारा EQ कहलाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, राइट, जिनसे हम भावनात्मक तौर से जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावनात्मक तौर से, उनकी मैं ये विश्लेषण करके जीवन में अगर इसको फॉलो करूं, उनकी भावनाएं तो हटनी होंगी ये कार्य करने से, राइट। तो वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है। फिर है आई, दो बात, एक दूसरा आई, आई मीन्स इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन माना कि जो मैं डिसीजन ले रही, जो मैंने लिया या जो मैं कार्य कर रहा हूं उससे समाज, पूरे देश विश्व को क्या होगा, फिर ह्यूमैनिटी को क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, राइट। मतलब इस धरती पर रहने वाला हर हर इंसान इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे इंसान किसी इंसान को डैमेज हो जाए किसी तरह का भी, तो वो कैसा है, ठीक है गलत है। मेरे किसी एक्शन के कारण कोई आदमी धरती पर, पूरी धरती पर एक आदमी मर गया, तो मैं दुख होगा नहीं होगा, उसको भी दुख होगा नहीं होगा, या उसको दुख हुआ मेरे कारण, गलत हुआ ना। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, राइट। अब जैसे आइंस्टीन ने क्या किया, नील्स बोर ने क्या किया, एटॉमिक बम बनाया ना, एटॉमिक पावर के बारे में बताया, किंतु बना तो दिया किंतु बाद में उनको कितना दुख हुआ, 1945 में जब उनको वो उसको मिसयूज किया गया तो उनको कितना दुख हुआ। हालांकि उन्होंने इसके लिए बनाया था कि लोगों को मारने के लिए बनाया था, उनका एम दूसरा था, पर उन्होंने कहा ये हमने बना तो दिया, सो हार्मफुल टू पीपल। कमेंट्स आपने पढ़े होंगे। तो फिर जो है लास्ट है ए, ए फॉर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन माना अब सब कुछ मैंने कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, घर वालों को भी खुश कर लिया, विश्व को भी खुश कर लिया, उसका मेरा क्या, उसका मेरा क्या। अब शाम हो घर आ गया, घर आने के बाद क्या मैं खुश हूं, वॉट मैटर्स टू यू। ऐसा तो नहीं मैं जो करके आया सब कुछ करके आ गया और घर में आके मैं इतना परेशान हो गया, दुखी हो गया, मैं नींद भी नहीं आ रही है, राइट। सो दैट इज एच क्यू, हैप्पीनेस क्वेश्चन, राइट। ये चार क्यूज होते हैं, ठीक है। ये पावर सिर्फ इंसान के अंदर, जानवरों में है ये पावर। कोई जानवर मुस्कुरा सकता है क्या, हाथी मुस्कुराता है कभी, शेर मुस्कुराता है, बिल्ली कुत्ता, सिर्फ इंसान मुस्कुरा सकता है, बंदर चिंपांजी कोई मुस्कुरा नहीं सकता, कोई चिड़िया, सिर्फ इंसान। तो इंसान मुस्कुरा सकता है, तो ये चारों पावर इंसान की विशेषता है, ठीक है। सिर्फ इंसान कर सकता है, तो इंसान अगर अपने हायरबेंड को यूज करे, एशिया लगाए हर बात में, तो कभी उसको स्ट्रेस नहीं होगा, वो हमेशा हैप्पी रहेगा और कभी बीमार भी नहीं होगा। कौन सी पावर, परसेप्शन पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये चार पावर मैंने बात की आपके, एनालिसिस, सिंथेसिस, इंटेग्रेशन एंड एसिमिलेशन। परसेप्शन तो इस फीलिंग, किसी बात को परसीव करना, वो स्पेशल नहीं है, वो परसीव तो कोई नहीं कर सकता, जानवर भी परसीव करता है, इट्स मोर ऑफ लाइक ए सेंसरी फंक्शन ऑफ द ब्रेन, वो कोई भी करेगा, सुई चुबा हुए कुत्ते को भी तो उछलेगा ना, परसीव करेगा ना, बस। तो ये समझिए मेरी बात, तो एशिया जो है ये पावर सिर्फ इंसानों में है, हायर ब्रेन में है, लोभ है इसका, इसका। तो इंसान जो है, इंसान की क्वालिटी क्या है, वो हमेशा एशिया लगा के फिर एक्शन में आता है, क्या करता है, एशिया लगा के फिर कर्म करना चाहिए इंसान को, ओके। और लोअर ब्रेन हमारा क्या करता है, रिएक्शन करता है, मैंने कोई चीज देखी बहुत अच्छी है, खाली उठा के, किसी और की ऐसे मतलब नहीं, मेरे को गुलाब जामुन अच्छा लगता, किसका किसका रखा था मुझे इससे मतलब नहीं है, उठाया और खा लिया, रिएक्शन है कि नहीं, किसका चेहरा देखा सुंदर सा है, उससे उस पर लट्टू हो गए ना, है ना, ये क्या रिएक्शन है कि नहीं है। जैसे कुत्ते को अगर टच करो, कुत्ता क्या करेगा, भूखेगा ना सीधा, ये थोड़ा सोच देखेगा ये आदमी सिंपल सा आदमी है या ये आदमी प्रेसिडेंट है इंडिया का, है ना, ये मेरे नीचे काम करने वाला है, मेरे ऊपर काम करने वाला, ऐसा है क्या। आपका बॉस आपको डांट मारे, कुछ भी गाली देगा, तो आप क्या बोलोगे, यस सर नहीं, है ना, और सबॉर्डिनेट कुछ करे, थोड़ा सा भी कुछ भी बड़ा थोड़ा सा भी बात ना मान, क्या करेगा, हम डांट लगाएंगे तुम्हें, उसको बॉस को डांट लगाएंगे क्या, आप गधे के पीछे, गधे के भी जाके खड़े हो जाओ, कोई भी जाके खड़ा हो जाए, है ना, आप खड़े हो जाओ या नौकर खड़ा हो जाए या मनमोहन सिंह खड़ा हो जाए, तो क्या होगा, वो भी करेगा ना पीछे से ना,
या नहीं मनमोहन सिंह कहा नहीं मुझे इसको नहीं करना, रिएक्शन करेगा ना, सिर्फ रिएक्शन करेगा ना। तो बेसिकली जो हमारा लोअर ब्रेन है वो क्या करता है, क्या करता है, रिएक्शन, राइट। तो मैंने बताया व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू चेंज, चेंज इज लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज। और हम क्या करते हैं जब रिएक्शन करते हैं, जब हम सिर्फ लोअर ब्रेन को यूज करते हैं, इंसान से नीचे गिर जाते हैं, इंसानियत से नीचे गिर के काम करते हैं, तो फिर हम तनाव में आते हैं। तनाव इंसान का धर्म नहीं है, तनाव में आना इंसान का धर्म क्या है, क्या इंसान का धर्म है, सदा मुस्कुराते रहना, है ना। देवी देवताओं की फोटो देखते हैं ना, देवी देवताओं की फोटो देखते हैं, गुरु नानक साहब की फोटो कैसी है, गुरु नानक साहब मुस्कुराते हैं, उदास नजर आते हैं, सरदार जी बताएं मुस्कुराते हुए थे कि उदास बैठे ऐसे करके, है नी, मस्त है ना। तो इंसान ये नेचर ही मस्त है, मस्त और मुस्कुराता हुआ चेहरा, चाहे कोई भी देख लो आप, किसी भी गुरु को देख लो, किसी को भी दिखाएंगे मुस्कुराता हुआ चेहरा, कृष्ण को देखो, राम को देखो, सीता को देखो, लक्ष्मी को देखो, किसी को भी मुस्कुराता हुआ। आप फोटो खिंचवाते कैसे, भले आप सारी उम्र नहीं ऐसे हो, सारी उम्र आप हंसते नहीं, हंसकर एक बार हंसके नहीं देखा, फोटो खिंचवाने जाओ तो भी जबरदस्ती हंस के दिखाओगे, नहीं करते कभी मूड ऑफ करके मुंह उदास करके फोटो खिंचवाते हो कभी, आप बताओ खिंचवाई कभी आपने आज तक, कितना जब मैं उदास हो जाऊं फिर खिंचवाता हूं, रुक जाओ जल्दी से, आपकी विशेषता है ना मुस्कुराना। तो ये जो है, तो लोअर ब्रेन जो रिएक्शन करता है सिर्फ, राइट। और मुख्य रिएक्शंस क्या है बेसिकली, ये जो आपने पांच विकार सुने होंगे ना, हमारे शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं, काम विकार, लस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, रिएक्शन है किसी की सुपरफिशियल ब्यूटी को देख के, स्किन को देख के, नैन नक्श को देख के, उसके ऊपर लट्टू हो जाना, उसके बारे सोचते रहना, ये है काम विकार, ठीक है, उसी के बारे में विचार चलते रहना, क्रोध, किसने कुछ कहा और मुझे उसको बिना उस पर ईर्ष्या लगाए रिएक्ट कर देना, क्रोध क्या रिएक्शन है। ऐसे ही लोभ, मोह, अटैचमेंट और अहंकार, ये पांच जो है बेसिकली, ये जो पांच चीजें हैं, ये पांचों के पांचों रिएक्शन है। क्या है पांचों के पांचों रिएक्शन, रिएक्शन है कि नहीं है, अगर ईर्ष्या लगा दो क्या होगा, रहेंगे क्या, ईर्ष्या लगाओ रहेगा, काम विकार रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, अहंकार रहेगा, नहीं रहेगा ना। इनके फिर दो दो बच्चे भी हैं, पता है आपको, नहीं पता, काम विकार का पहला बच्चा आलस्य, लेजीनेस, और काम दूसरा बच्चा अलबेलापन, केयरलेसनेस, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस, राइट। और इससे वापस काम विकार पैदा होता है, आप आलस में पड़े रहो, बिस्तर में पड़े रहो, उठो नहीं, मन में बार बार वो विचार आते रहेंगे, आप केयरलेस हो जाओ अपनी दिनचर्या में, केयरलेस हो जाओ सुबह उठने में, जो भी दिनचर्या आपकी उस सुबह जल्दी उठना, फिर तैयार होकर घूमने जाना, उस दिनचर्या थोड़े से केयरलेस हो जाओ, आज ये काम करना था आज नहीं किया, फिर उससे काम विकार पैदा हो जाए। क्रोध के दो बच्चे हैं, सिनिसिज्म एंड हॉस्टिलिटी, सिनिसिज्म है ना, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, क्रिटिकल नेचर, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, हैं जी, क्रोध के दो बच्चे हैं, सिनिसिज्म एंड हॉस्टिलिटी। सिनिसिज्म का मतलब होता है फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, राइट। और हॉस्टिलिटी माना रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना, किसी ने आपके प्रति गलत कर दिया जाने अनजाने, आप उसको बस अपना दुश्मन बना लेते, बस दुश्मन समझ लेते कि इसको मुझे ऐसे करना, मुझे ऐसे करना, और उससे फिर वापस क्रोध पैदा होता रहता है, राइट। लोभ के भी दो बच्चे हैं, शक और अनुमान, हमेशा वह एज्यूम करता रहता है क्रोधी व्यक्ति, सस्पिशियस, उसने ऐसा किया होगा, वो ऐसा कर रहा होगा, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो प्लानिंग बना रहे होंगे मेरे खिलाफ कुछ। जो ग्रीड होता है ना, ग्रीड खाली पैसे का नहीं होता है, नाममान का भी, नाममान शन का भी लोभ होता है, उससे हम और वापस ग्रीड और पैदा हो जाता है। और फिर मोह के भी दो बच्चे कौन कौन से हैं पता है नहीं पता है? एंजाइटी एंड फियर, डर भय, उससे फिर और मोह पैदा हो जाता है। अहंकार के दो बच्चे हैं, एक तो टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी एंड फियर, डर डर भय, चिंता और भय डर। शोले फिल्म का डायलॉग याद नहीं है क्या आपको, गब्बर सिंह का, जो डर गया समझो मर गया ना। तो फिर है जेलसी, है ना, अहंकार का बच्चा टाइप ए बिहेवियर में ना, हर समय प्रेशर महसूस, प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्शन का प्रेशर है ना, और कंपैरिजन, कंपटीशन, ये है टाइप ए बिहेवियर। जेलसी, फिर दूसरा ईर्ष्या, टाइप ए बिहेवियर, टाइप ए माना हमेशा नंबर वन, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, है ना, हर चीज में अपने आप को मैं करते रहना, हमेशा ना आगे सब चीज में प्रेशर में रहना, मेरी चीज हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी चीज ऐसे होनी चाहिए, मेरा कहना नहीं माना आपने, जैसे मैंने कहा ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं किया तो फिर जब तक फिर उसको गुस्सा करना उसके साथ। तो ये जो है, इनके भी 10-10 बच्चे और हैं आगे ना, सभी के इसलिए तो कौरव कहते ना, 100 कौरव थे ना, तो ये नेगेटिव टेंडेंसीज है हमारी जो, और ये जो पांचों विकार हैं, दीज आर कॉल्ड एज एनिमल इंस्टिंक्ट्स। क्या कहते हैं इनको? एनिमल इंस्टिंक्ट, पशु की वृत्ति कहते हैं, पार्श्विक वृत्ति कहते हैं इसको, इंसान की वृत्ति नहीं कहते। देखो, इंसान कभी छुपा के करता है ये पांचों काम, छुपा के करता है कि कैसे करता है बताओ, ओपन में कभी करता है क्या? देखो, दो कुत्तों को लड़ना हो तो कैसे, कहां कहां लड़ते हैं आपस में, सड़क पे लड़ेंगे ना, नहीं वो कहेंगे अंदर आ जाओ देख लेगा, ऐसे करते हैं कुत्ते। क्या पति पत्नी अंदर घर में है, लड़ रहे हैं जोर से, मतलब लड़ाई छोटी बात पर लड़ाई शुरू हुई थी, पति ने उसकी मायके के बारे में, मां के बारे में कुछ बोल दिया, पत्नी के बारे, मां के बारे में, भाई के बारे में कुछ बोल दिया, पति पत्नी चिढ़ गई। अब फिर वो उसने कहा तुम्हारी मां को कम है क्या? फिर उसने बाद इस तरह से आपस में झगड़ा शुरू, छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू होता है, फिर क्या बात कहां तक पहुंच जाते हैं, मतलब उसको कुछ उठा के फेंक के मारेगा, वो उसको उठा के कुछ करेगा, या व्हाटएवर, फिर एकदम ऐसी बात पे आते, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूं, वो कहते मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, है ना। अभी ये बात यहां तक आती है कि मैं अपने घर जा रही हूं, वो कहते तुम क्यों जा रही हूं, मैं ही चला जाता हूं, है ना। अब यहां तक अचानक दरवाजे पर नॉक होती है, फिर क्या होता है, सब कमरा अस्त व्यस्त, ड्राइंग रूम पूरा अस्त व्यस्त हो गया, एकदम जल्दी जल्दी छींक करते हैं, और फिर जाके दरवाजा खोल के फिर बाकी बैठेंगे, फिर क्या बोलते हैं आपस, उसके सामने क्या बोलेंगे, हम एक दूसरे के बारे रह नहीं सकते। दिखाया क्या, अभी दिखाया क्या, आवाज कैसी आ रही, आवाज कुछ नहीं आ रही थी, वो तो ऐसे ही हम कुछ काम कर रहे थे घर में। हमने नाटक करना, कोई रिहर्सल कर रहे थे किसी, मतलब कभी नहीं बताएंगे ना। तो इंसान का ना काम विकार दिखा के करता है, ना क्रोध दिखा के, लोभ भी नहीं दिखाएगा, लोभी व्यक्ति बाहर दान करके दिखाता है, अंदर लोभ करता है बाहर दान करके दिखाएगा। अहंकारी व्यक्ति बाहर से बहुत नम्रता दिखाता है, अंदर से बहुत ईगो होती है, किंतु बाहर से बहुत नम्रता दिखाएगा। और ऐसे मोह वाला व्यक्ति भी एकदम मोह नहीं दिखाएगा। तो बेसिकली जो है, जितने भी पांच विकार हैं, इंसान की नेचर नहीं है, पशु दिखाते हैं बाहर, पशु जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करना होगा। दो कुत्ते हैं, आप चार रोटी डाल दो बीच में, जो कुत्ता ताकतवर होगा क्या करेगा, वो दूसरे को ये नहीं कह, दो तू ले ले, दो मैं खा लेता हूं, वो कह सारे मैं खाऊंगा, तू जा यहां से भाग जा, है ना। इंसान क्या करता है, नहीं तो दो तुम खा लो, दो मैं खा लो, चार आ गया तो चार एक एक रोटी बांट देगा, चलो तुम ज्यादा खा लो, तुम मैं नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे पेट भरा हुआ। इंसान की नेचर, ये विकारों की नेचर इंसान की नहीं है, इंसान की ट्रू नेचर नहीं है ये वाली। एम आई राइट और रॉन्ग? पर हम सभी यही फंसे हुए, नहीं फंसे हुए, क्यों फंसे हुए हो? एशिया नहीं लगाते, एशिया क्यों नहीं लगाते? एशिया में रहते हो, कहाँ रहते हो? यूएस में रहते हो, एशिया में रहते हो? फिर क्यों नहीं लगाते हो एशिया? अमेरिका वाले एशिया नहीं लगा, कोई हर्जा नहीं है? लगाएंगे कौन सी तारीख से? कौन सी तारीख से? आज से लगाएंगे। चलो देखो, अब ये तो डेड बॉडी में भी है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक, आंखें, नाक, कान, मुख है, ब्रेन भी है, सारे सेंटर्स भी हैं। अब इसको चलाने वाला कौन? इसको चलाने वाली है आत्मा, ठीक है। ये कहां बैठती है? ये सीट ऑफ द सोल है, यहां आत्मा बैठी है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे बैठी है और इससे सात लाइट निकलती रहती है। ये सात लाइट निकलती हैं, इसमें सात लाइट कौन सी निकलती हैं? इससे के पी पी एल एच बी पी, है ना। अगर इंग्लिश में कहें के पी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, है ना। सीक्वेंस याद, सीक्वेंस बहुत जरूरी है ना, ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ज्ञान, नॉलेज, फॉर पी फॉर प्योरिटी पवित्रता, पी फॉर पीस शांति, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस, पी फॉर पावर्स। तो ज्ञान बेसिकली क्या है? ज्ञान एबीसीडी है। क्या है ज्ञान? एबीसीडी। इस सेंस में ज्ञान एबीसीडी है सिर्फ, जैसे हम कहते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, है ना। ये ए फॉर आत्मा है। क्या है ए फॉर? हमारी हमारी रियलिटी क्या है, सत्य क्या है एक इंसान का? ये जो मैं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा हूं मेरा शरीर है, मैं डॉक्टर हूं, ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कभी मुर्दा बोलता है क्या? एक एक डॉक्टर, एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है सीरियस हालत में, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, बचा नहीं पाते, तो पेशेंट के रिलेटिव को क्या बताते हैं? बाहर आके आईसीयू के बाहर आके क्या बताते हैं? वी ट्राइड अवर बेस्ट, आई एम सॉरी, ही हैज गॉन, टेक द बॉडी। पेशेंट आया था, अभी क्या, अभी के बाहर क्या जा रहा है? क्या पेशेंट ऐसे भेज सकते हैं अपना पेशेंट वापस ले जाओ, ऐसा बोल सकते हैं? अमेरिका में शायद ऐसा बोलते होंगे, अपना पेशेंट वापस ले जाओ, वो मर गया अभी वापस ले जाओ पेशेंट को वापस, ऐसे बोलेंगे क्या? पेशेंट शब्द दोबारा इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है। हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? पेशेंट बॉडी कैसे बन गया? क्योंकि उसमें से लाइफ फोर्स निकल गई ना, आत्मा निकल गई। तो आत्मा जो है, वो जो आत्मा है वो यहां है, तो सब कुछ चल रहा है। ये सात एनर्जी शरीर के सारे अंगों को चला रही है, 80,000 बिलियन कोशिकाओं को ये सात एनर्जी चला रही है। तो ये ज्ञान जो है, ये यहां से सारी बॉडी में फैल रहा है आत्मा से, राइट। जैसे आपने देखा डैम ऊपर से पानी ऊपर से गिरता है, डैम में क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या किसमें बदल जाती है? नीचे आके नीचे टर्बाइन है, किसमें बदल गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई नहीं, फिर वो डायनामो में स्टोर करते हैं और फिर सारे घरों में जाती है। उसको फिर उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पंखा भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, हीटर भी चलाते हैं, नहीं कमरा गर्म भी करते हैं, नहीं करते? सारा खाना, खाना भी बनाते हैं कि फैक्ट्री भी चलती है, उससे गर्म ठंडा जो कुछ करना उससे सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही आत्मा में सात एनर्जी है, यहां से यहां हाइपोथैलेमस वो जगह है जहां पे स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब आत्मिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू मेंटल एनर्जी। आत्मिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मानसिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और फिर वो मानसिक ऊर्जा फिजिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इससे फिर हमारा एक सिस्टम चलता है, इसलिए स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी। सो ह्यूमन बींग क्या है? ह्यूमन बींग इज ए कंटिन्यूम ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। खाली बॉडी नहीं है आदमी, आदमी नहीं खाली बॉडी है क्या? बॉडी तो डेड बॉडी मरने के बाद होता है, किंतु एक इंसान पूरा कंप्लीट सिस्टम है जिसमें आत्मा भी है, मन भी है और तन भी है, ठीक है। तो यहां से जो एनर्जी, तो ये ज्ञान यहां से सारी बॉडी में जा रहा है, एक कोशिका पे उतर रहा है। अनदनाद जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, कई बार हमारी वाणी में जो आता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में आता है वाणी में शब्द अनदनाद, तो एक तरह का यहां से ये साउंड सारी जगह जा रही है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, बी फॉर बाबा, बाबा मीन्स परमात्मा, परमात्मा सब आत्माओं का पिता, अल्लाह, सतनाम, सतगुरु, वो जो है हमारा, हम आत्मा है, उसकी संतान है। वो भी एक ज्योत है, वो भी एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जैसे हमें ऐसा वो है, किंतु वो सातों गुणों का सागर है, ओशियन। और फिर डी फॉर ड्रामा, मेरे सर सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन मेरे सत्सर संबंध उसके साथ हैं, वो मेरा माता भी है, पिता भी है, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सज्जन। आरती में गाते हो नहीं गाते, क्या गाते हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, नहीं गाते नहीं गाते? तो इसी माना मेरे संबंध सब उसके साथ है, दुनिया में जितने संबंध नहीं है, मेरी ड्यूटीज है, फर्ज है, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, समाज के प्रति, जहां मैं ऑफिस में काम करता हूं वहां फर्ज है मेरा, मेरा अकाउंट है वहां, चुकतू करने का ही है, देना ही पड़ेगा, दिया हुआ तो देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और लिया हुआ तो वापस देना पड़ेगा, राइट? तो ये, और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा में संसार एक नाटक है, इस ड्रामा में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट कर्म कर रही है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसमें जो हुआ अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, राइट? अभी तक मान लो किसने मुझे धोखा दिया, किसने दुख दिया, गाली दी, तो मैंने पिछले जन्म में गाली दी हुई थी, इसलिए उसने मुझे गाली वापस दी, धोखा दिया हुआ, किसने धोखा दिया, उसको जरा भी फील नहीं होता, जो धोखा देता है, दुख देता है, उसको फील होता है क्या? मैं सोचता रहता हूं उसने मेरे को ऐसा बोला, कभी तो उसको फील होगा, कोई फील नहीं होता है, वो तो हक से चलता है ना, क्योंकि उसने, मैंने धोखा दिया हुआ था, दुख दिया हुआ था, उसने दे दिया, हिसाब किताब चुप तो हो गया, अब मैं बोलूं तो मेरे सिर पे उल्टा ही आएगा, नहीं? अब बैंक से आपने 10,000 लिए थे आपने, उसने 12,000 वापस ले लिए, 2,000 का इंटरेस्ट लग गया, तो के बैंक वाले आपको माफी मांगने आएंगे कि आपने 12,000 हमने आपसे ले लिया, भाई आपने लिए थे 12,000, देखो एहसान थोड़ी ना, एहसान किया बैंक वाले के ऊपर, कोई एहसान किया है क्या? एहसान थोड़ी ना किया, ऐसे हमको फिर किसी ने पिछले दिन में हमने गाली दी थी, तंग किया था उसको, वो हमने उसको 10 गाली दी थी, उसने 12 सुना दी, और ठीक है
तो हाँ,
कुछ हम फिर नया कर रहे हैं ना हम, अब उसने 12 गाली दी, मैंने आपको और उसको 15 और सुना दी, तो नया शुरू हो गया, अगर 12 चुपचाप सुन लेता तो अकाउंट क्लियर हो जाता, नहीं है सर? तो ये जो है, ये ज्ञान सारी बॉडी में जा रहा है, इस ज्ञान से पवित्रता आती है, ये ज्ञान जो है अंदर जा रहा ना, ये इससे पवित्रता है। पवित्र हुआ नहीं हुआ? एबीसीडी को अंदर रिवाइज करो, रिलाइज करो, तो क्या पवित्र हुआ नहीं? बुद्धि पवित्रता आई कि नहीं आई? पवित्रता आई तो शांति आ गई, विचार चलने कम हो गए, मन में चल रहा था इसने ऐसा वैसा ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, ये अपने आप को क्या समझता है, ये अपने आप को क्या समझते हैं, इनके लिए मैंने इतना किया है, मेरे को ऐसा बोलते हैं, विचार बढ़ रहे हैं, बढ़ गए थे नहीं बढ़ गए थे? अब क्या हुआ, एबीसीडी करने से क्या हुआ, मन शुद्ध हुआ, विचार कम हो गए, शांति। शांति किसे कहते हैं? कम विचारों को शांति कहते हैं, पॉजिटिव और कम विचारों को शांति कहते हैं। पॉजिटिव कहां से पैदा होता है? ट्रुथ से पैदा होता है, सच्चाई से पैदा होता है, ट्रुथ से। ट्रुथ से क्या पैदा होता है, क्या पैदा होता है? ट्रुथ से पॉजिटिव पैदा होता है, और झूठ से नेगेटिव पैदा होता है। अगर अपने को आप नेगेटिव झूठ समझते रहो ना, मैं जो ये अपने आप में डॉक्टर हूं, पैदा हुआ डॉक्टर था क्या? लिखा है डॉक्टर यहां पे? नहीं, ये तो मेरा रोल है, मैं ऑफिसर हूं। अब घर में ऑफिसर हो क्या? आप घर में ऑफिसर बन के देखो आप, चपरासी भी नहीं, चपरासी की वैल्यू नहीं रहती है ना, चपरासी की अच्छी वैल्यू होती है, कभी कुछ कह तो सकता है ना, साहब मैं नहीं करूंगा, है ना, है ना? तो मतलब बेसिकली जो है, तो ये इसी को इस, ये जो साउंड एक तरह की सारी बॉडी में उतरती रहती है, कहते शब्द से ही संसार उपजाए, है ना, कहते एक शब्द से सब जग उपजाए, कौन भले कौन मंदे, तो ये शब्द इसी से सारी चीजें पैदा होती, इस ज्ञान से पैदा होती है पवित्रता आई, पवित्रता शांति आई, शांति से प्यार पैदा होता है। प्यार माना, प्यार की डेफिनेशन क्या है? अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर इज कॉल्ड एज लव। तीन शब्द है उसमें, अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। एक मां अपने बच्चे को सब केयर करती है उसकी, सब सुबह से लेकर शाम तक, किंतु बार बार उसको टोकती रहे, डांटती रहे, तो क्या होगा? उसका बच्चे को पूछो, मम्मी तेरी मम्मी तेरे को प्यार करती है? क्या बोलेगा? अरे मम्मी पूरी क्या है, हर समय डांटती रहती है, क्या प्यार करती, कोई प्यार व्यार नहीं करती। एक पत्नी अपने पति की बहुत केयर करती है, हर चीज की, कपड़े की, हर बात, खाने पीने की सब, किंतु बार बार टोकती रही, आप देर से क्यों आए, कहां थे, आपने क्या किया। तो फिर क्या उसको पति को पूछो आपकी पत्नी आपको प्यार करती है, कहती पूरी आफत है। प्यार की बात करते हो, वो तो आफत है। अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल केयर और डिग्निफाइड केयर। एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ करेगी, फिर कहेगी नहीं तुम्हें राजा बेटा है, तो तुम मेरी जान है, तो तुम मेरे चांद, वो क्या होते गाना है ना, मेरी आंखों का तारा है तू, है ना, चंदा है तू, है ना। उसको इस भाव से देखती है ना, हमेशा उसकी महिमा करती है, हमेशा उसकी अच्छी बातें, बुरी बातें नहीं देखती है, तो बच्चा कहता है हाँ मेरी माँ जैसा कोई नहीं है। इसलिए बच्चा कभी अपनी माँ की बात नहीं भूल पाता, बाप को भूल जाता है। 60 साल का आदमी भी होगा ना, 60 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए तो भी क्या बोलेगा, दर्द हो रहा हो क्या बोलेगा, हे बाप नहीं बोलेगा, ठीक है, हे माँ बोलेगा। नहीं, उसको माँ याद आएगी, उसकी माँ कैसे उसको प्यार करती थी, कैसे उसकी केयर करती थी, नहीं, क्योंकि उसने कैसी केयर की है उसको, कैसी केयर की है उसकी, अनकंडीशनल। तू जो है जैसा है मेरा है, तू जो है जैसा है मेरा, ये नहीं कि तू ये करेगा तो मैं तेरे को प्यार करूं, नहीं, तू खराब है, अच्छा है, डाकू बन गया, कैसा बन गया, जो मर गया, जो बन गया, तू मेरा है बस, तेरे को मैं प्यार करूंगी, तेरे को मैं तेरी में केयर करूंगी, राइट। और डिग्निफाइड माँ, जिस माँ जो है ना डाकू होगा ना जैसे, तो भी उसको प्यार, उसको क्या करेगी, डिग्निफाइड केयर। नहीं नहीं, तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, तू ऐसा ना कर, तू तू तेरे कर्म ऐसे नहीं है, तू ऐसा नहीं कर सकता है ना, तो भी उसको उस रूप से नहीं देखेगी, उसका ओरिजिनल रूप था ना बचपन का रूप, वो देखेगी, नहीं देखेगी। तो ये जो है, ये प्यार, ये हमें प्यार, ये प्यार हमारे अंदर रूहानी प्यार कहलाता है, राइट। ये हमें क्या फीलिंग कराता है, खुशी की फीलिंग कराता है, हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस, इंद्रियों का सुख नहीं, देखने सुख नहीं, सुनने का सुख नहीं, हमें रियल सुख की अनुभूति कराता है। और इससे फिर आनंद की अनुभूति होती है, उससे फिर शक्ति आती है। शक्ति माना कोई लड़ने की शक्ति नहीं, परखने की शक्ति, राइट क्या रॉन्ग क्या, निर्णय करने की शक्ति, पहाड़ जैसी बात को छोटा बना देने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, 8 शक्तियां होती हैं जो आपको कोर्स में बताएंगे, है ना। तो ये 8 शक्तियां आती, तो ये 7 एनर्जी जो है इसके बेस पे आदमी सत्व प्रधान, आत्मा सत्व प्रधान कहलाती है। सत्व प्रधान है सातों में भरपूर, रजो माना आधी हो गई एनर्जी सातों, और तमो माना सातों एनर्जी ना के बराबर है। आज का इंसान तमो प्रधान है, सातों एनर्जी ना के बराबर है, ज्ञान है ना, पवित्रता है ना, शांति है ना, प्यार है ना, खुशी है ना, आनंद है ना, शक्ति है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये जो सातों एनर्जी के आधार पे ये जो है हमारी, जब 7 एनर्जी है तो एशिया काम करता है, अगर 7 एनर्जी कम हो गई है तो एशिया है कि तू काम नहीं करता है। एक पढ़ा लिखा इंसान, बड़ा ऑफिसर, दूसरों को समझाने वाला, घर में आके क्या करता है, एशिया लगता है उसका, नहीं लगता है। बच्चे के साथ, पत्नी के साथ एशिया लगता है क्या, उसकी पत्नी कुछ बोले, बच्चा कुछ बोले तो एशिया लगता है क्या, क्योंकि उसका उससे मोह है, उससे अटैचमेंट है, तो वहां पर उसका एशिया नहीं लगेगा, राइट। जिनसे मोह नहीं है उनसे एशिया लगेगा, ठीक है, बाकी से एशिया नहीं लगेगा, है ना। तो एशिया लगाने के लिए सातों एनर्जी भरपूर है तो एशिया लगा सकते हो। अब 7 एनर्जी कहां से आएंगी, कहां से आएंगी, यही स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ठीक है, यही मैं आपको स्लाइड दिखाने के बाद यहां समझा रहा हूं, ठीक है। अब 7 एनर्जी किसके पास है, मिलती है किसी के पास, बाजार में मिलती है, आप कहां से आए, सभी यूपी से हैं, अलग एरिया से है ना, दिल्ली से भी कुछ आए होंगे ना, गुजरात से भी आए होंगे, तो मिलती कहीं इंडिया में, कहीं मिलती है क्या, शांति मिलती है दुकान पे, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद कोई इंसान के पास है क्या, योगी के पास भी नहीं होती है, उसका अपना गुजारा नहीं कर पाता बेचारा, है ना, उसको भी ऐसे कहते हैं कोई, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा और क्या देगा दूसरों को ना, तो एक ही उसका पावर हाउस है, वो कौन है, परमात्मा, राइट। परमात्मा कौन है, परम आत्मा, हम आत्मा है, वो परम मीन सुप्रीम, सुप्रीम सोल, वो सातवें एनर्जी का सागर है, तो अगर हम अपने को आत्मा समझ के उसको याद करते हैं तो सातवें एनर्जी हमारे नाम लगती है, राइट। तो उससे फिर सात एनर्जी आने से अपने आप एशिया लगना शुरू हो जाता है। तो हम एशिया लगा, एशिया लगने से फिर एक्शन में आते हैं और रिएक्शन होनी बंद हो जाती है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके अंदर हेल्थ और हैप्पीनेस अपने आप आने लगेगी। तो जस्ट मैं आपको ये थोड़ा सा यहां पर दिखा देता हूं। तो ये जो है हमारे अंदर इंटरनल प्रेशर कहां से आते हैं, माइंड और बॉडी से आते हैं, ठीक है। माइंड हमारे अंदर मन है और बॉडी है, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर फैमिली से आते हैं, परिवार से आते हैं, परिवार में कुछ ऊपर नीचे होता है, सोसाइटी में होता है, जहां काम करते हैं वर्क प्लेस में, सिटी में, शहर में, ट्रैफिक से, आतंकवाद हो, नेशनल लेवल पे कुछ हो जाए, फाइनेंशियल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल, एनवायरमेंटल और लीगल लेवल पे, कहीं भी कुछ हलचल होगी, रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कोई चेंज होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और ये तो अब प्रेशर बढ़ जाए, इंटरनल प्रेशर कैसे है, आपको बीमार हो जाए, इंटेलेक्चुअल वीकनेस हो जाए, बातें भूलने लग जाए आप, बरीज इनसिक्योरिटीज अंदर मन में, डर बहुत डर लगता हो पानी से, आग से, है ना। कई लोग बहुत जल्दी चिंता गुस्सा वाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो बचपन से नेचर बन जाती है, एक दिन बदल जाएगी क्या, नहीं बदल सकती ना। ऐसे ही एक्सटर्नल प्रेशर है, परिवार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई मेंबर बीमार हो जाए, आपके पेरेंट्स बीमार हो, बहुत पैसा लग रहा हो उसमें, है कोई वर्क प्लेस पे कोई आपका बॉस आपको लाइक नहीं करता हो, या आपके सबॉर्डिनेट आपका कहना नहीं मानते हैं, फाइनेंशियल इनकम कम हो, खर्चा ज्यादा हो गया हो, सोशल लीगल ये सब आप जानते हैं। और ये जो ये फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाय इनर स्ट्रेंथ, आत्मिक शक्ति, प्रेशर जब बढ़ जाते हैं आत्मिक शक्ति से तो फिर आपको क्या होता है, आप तनाव महसूस करते हैं। एक ही तरीका ठीक होने का, क्या, अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ा दो। तो कभी भी कितना भी प्रेशर हो, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, आप कभी भी तनाव महसूस नहीं। इसलिए यहां पर आप देखें, जो भी जितने भी लोग रहते हैं वो टेंशन में रहते हैं क्या, तनाव में आते हैं क्या, क्या उनको प्रेशर नहीं होते, प्रेशर उनको होते नहीं होते हैं, प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद वो मुस्कुराते क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको आत्मिक शक्ति ज्यादा है उनके अंदर ना, ठीक है, राइट। तो ये जो है आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन शब्द कहां से आया, मेडरी से आया, मेडरी माना MEDERY, ये लैटिन वर्ड है, मेडरी मीन्स टू हील प्रीवियस पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स, जो आपके मन में और भावनाओं में चोट पहुंची है ना, जो आदमी उसी के बारे में सोचता रहता है हमेशा, उसी से विचार ज्यादा बढ़ते रहते हैं और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से जो विचारों का प्रेशर ज्यादा होता है उससे आदमी तनाव महसूस करता है। और मेडिटेशन से आप पास्ट की सारी बातों को भूल सकते हैं, राइट, वो हील हो जाती है। और उससे जो है ये तो टाइप ऑफ स्ट्रेस लिखी हुई है, यू स्ट्रेस व्हेन इनर स्ट्रेंथ इज मोर देन द प्रेशर्स, आत्मशक्ति ज्यादा तो ये चैलेंज के रूप में काम करती है, ठीक है, हमें ये करना है, मुझे काम करना ही है, तो इससे चैलेंज हो गया ना, राइट। और डिस्ट्रेस व्हेन प्रेशर्स आर मोर देन इनर स्ट्रेंथ, आत्मशक्ति बढ़ जाए, तो हमें सिर्फ क्या करना है, आत्मिक शक्ति बढ़ा लेनी है। जब भी आप स्ट्रेस, नेगेटिव टीम, जब आप टीम माना थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, ये हमारा मन है, मन में चार एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उससे एक तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, लालटेन एक्टिव हो जाती है और टेंशन वाले हार्मोन निकलने लगते हैं, उससे आपका हार्ट रेट बढ़ता, बीपी बढ़ता, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता, उससे हार्ट पर लोड बढ़ जाता, उससे हमारी आर्टरी जल्दी जल्दी ब्लॉक होने लगती है। अगर आपकी टीम पॉजिटिव है, शांति, प्यार, खुशी है आपके जीवन में, तो आपका पैरासिंपैथेटिक, ये लाल तार, हरी तार एक्टिव हो जाती, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते और हार्ट रेट कम हो जाती, बीपी कम हो जाता, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता और हमारा ब्लड पतला हो जाता और बीटा एंडॉर्फिन बढ़ जाते, नेचुरल पेन किलर्स बॉडी में पैदा हो जाते, तो सिर दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सारे बॉडी के दर्द गायब हो जाते। और मेलेटोनिन, नींद गहरी आती, मेलेटोनिन नींद का हार्मोन है, पीनियल ग्लैंड से निकलता है, वो आपको आपको नींद अच्छी गहरी, मतलब जो आप 8 घंटे में सो के फ्रेश नहीं होते, आप 6 घंटे में फ्रेश हो जाते, 4 घंटे में फ्रेश हो जाएंगे। और डीएचए एंटी एजिंग हार्मोन है, तो आपको एंटी एजिंग हार्मोन, वो हार्मोन निकलेगा तो क्या होगा, आप यंग महसूस करेंगे, 60 साल के होंगे तो कितने साल के महसूस करेंगे? 40 साल के महसूस करेंगे। और 40 साल के होंगे तो कितना महसूस करेंगे? 20 साल के। और 20 साल के होंगे तो, और आपकी आर्टरी जगह ब्लॉक होंगे तो खुल जाएंगे, ठीक है, राइट। तो मतलब इस तरह से अगर ये जो अगर आप करें तो ये मैं समझता हूं, ये मैं यहां इसको छोड़ देता हूं। तो बेसिकली हेल्दी का मतलब क्या है? हेल्दी शब्द जो है आप इसको दिमाग में डाल लो अपने, आप इसको अपने दिमाग में सेट कर दो, ठीक है। इसमें कुछ मैंने स्पेशल बात नहीं बताई आपको, हेल्दी शब्द बना ही हील प्लस डाई से है, अर्थात सारे विश्व में सिर्फ एक ही आदमी है जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है? भगवान, ये डॉक्टर, सिर्फ आप खुद हैं। ना डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है, भगवान आपको ठीक कर सकता है। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, भगवान आप उसके एक श्रीमत उसकी डायरेक्शन पे चलो, एक उसकी एक हिम्मत का कदम उठाओ तो भगवान आपको हजार कदम आपकी मदद करेगा। हिम्मत बच्चे कहते ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत ही नहीं करो तो कहां से भगवान मदद करेगा। तो ये जो है आपको, और सेल्फ अवेयरनेस, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्व मीन्स इनर सेल्फ और आत्मा सोल, स्था माना कॉन्शियस। तो हेल्दी माना सोल कॉन्शियस है, स्व मीन्स आत्मा, स्था माना स्थित, तो स्वस्थ माना आत्मिक स्थिति में स्थित। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता सुनी आपने बचपन में? नहीं सुनी। ये कविता उसने इसलिए लिखी थी कि एक आत्मा एक सितारा यहां चमक रहा है, वो जब तक सब कुछ जो चमक रहा है सब कुछ चलता रहता है, जब वो चमकना बंद कर देता सब कुछ बंद हो जाता है, निकल जाता सब कुछ बंद हो जाता है। हाउ वे वंडर व्हाट यू आर, मुझे समझ नहीं आया तुम कैसे कैसे सब कुछ चला रहे हो। 465 साल पहले लिखी हुई कविता है, फ्रांस के कवि ने लिखी थी। फिर परमात्मा के पर लिखा, अप अबाउ द वर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड नॉट ए डायमंड, एक सितारा और है सूर्य चांद तारों के पार। फिर उसने इन द स्काई लिखना चाहिए था, अबाउ द स्काई, है ना। तो इस तरह से जब आप ये समझते हैं तो इस तरह से ये जो है, टू हील थाइसेल्फ वन नीड्स सेल्फ एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम गॉड बिकॉज गॉड इज ट्रूथ। तो पहले वो इंफॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग करता है, पहले अपने बारे में बताता है मैं कौन हूं, परमात्मा अपने बारे में बताता है, जैसे बताया ना परमात्मा शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन में आके बताता है मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, मन क्या है, बॉडी क्या है, और एज पर बायोलॉजिकल क्लॉक कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे सब काम करने, एक्यूरेट उसके अकॉर्डिंगली काम करो तो तीनों एनर्जी की हार्मनी हो जाती है, उससे आप क्या होते हैं, एवर हेल्दी एवर हैप्पी हो जाते हैं। ये मैं ये दिखाती लास्ट स्लाइड दिखाता हूं। अगर अपने को आत्मा समझ के आप सुबह 4 से 5, सुबह 4 बजे उठें, मुंह हाथ धो के फ्रेश होके ब्रश करके बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, कहीं भी कुर्सी बैठे, जमीन पे बैठे, कहीं भी बैठे, कोई मुद्रा नहीं लगाने, कोई पोस्चर नहीं, बैठे आराम से बैठ जाएं कंफर्टेबल होके, और अपने को आत्मा समझ के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नाउ आई नो हु आई एम, है ना, 7 एनर्जी मुझे आत्मा से निकल रही है, सारी बॉडी में जा रही है ना, और परमात्मा 7 एनर्जी का सागर मुझ में आ रही है, इसको फील करो, वो मेरी मां भी है, बाप भी है, अर्थात संबंध से उसको याद करो, डीपो ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, इस तरह से आप अपने को याद करो सुबह 4 से 5, आधा घंटा आनंद की स्थिति में आ जाओ, अपने आप आनंद की स्थिति आ जाएगी ये विचार करते करते, तो आपको ये सातों एनर्जी आपकी बॉडी में आत्मा में आ जाएंगी, उससे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पीनियल तीनों ग्लैंड से हरा हार्मोन हार्मनी में निकल आएंगे, और अगले 24 घंटे में आपने हार्मनी में इसमें निकाल लिया आपने, तो अगले 24 घंटे में जो भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, नींद आना, डर लगना, वो सब कम हो जाए। अगर 4 से 5 में आप सोते रह गए तो क्या होगा, उसमें सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, 4 से 6 दिखते डरावने सपने आते हैं, टेरर ड्रीम्स आते हैं, तो उसमें आपके स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा निकलेंगे, टेंशन वाले ज्यादा निकलेंगे, 18 में से जो टेंशन वाले ज्यादा हैं वो ज्यादा निकलेंगे, और फिर आपको सारा दिन ये जो बीमारी जो है बीमारी और बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो भी है मोटापा या जो भी बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है आपको, हड्डियों का दर्द है, हड्डियों का दर्द और बढ़ जाएगा। इसलिए कहा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 6 घंटा नींद बहुत है, ओके। तो ये 4 से 5 आधा घंटा आनंद की स्थिति में आ जाओ तो 7 एनर्जी बढ़ जाएंगी, और फिर 8 बजे तक अपनी टीम अपने मन को पॉजिटिव रखो, 8 बजे एडिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, तो उसलिए आप 8 बजे तक अपने आप को टीम मन माना टीम मन के 4 एस्पेक्ट टीम माना थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज इसको पॉजिटिव रखो, तो टीम आपकी पॉजिटिव होगी। वो हम कैसे करते हैं, हम मुरली पढ़ते हैं, परमात्मा महावाक्य को मुरली कहते हैं, आपको बताएंगे बहन जी सारिका बहन, आप इनको बताना, आपका नाम नहीं मुझे पता, आप बताना इनको, तो वो मुरली क्या चीज है, वो 100% पॉजिटिव टीम है, परमात्मा महावाक्य है। हम उस सुबह से एक बार सुबह उठते ही अमृत वेला योग करते ही हम लोग क्या करते हैं, पहले मुरली पढ़ लेते हैं और फिर उसी मुरली के ध्यान में उसी बातों को, परमात्मा ने मुझे आज क्या कहा, मेरे लिए क्या कहा, उसी ध्यान में हम स्नान करते हैं, शेव करते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं, उसी फीलिंग में वॉकिंग करते हैं। फिर 7 बजे 7 से 8 मुरली होती है सेंटर पे, उसको सुनते हैं, तो 8 बजे तक हमारी टीम पॉजिटिव रहती है। हम नेगेटिव को घुसने नहीं देते मन में, कुछ नहीं, मोबाइल शोबाइल को दूर रखते हैं। इमरजेंसी आएगी तो घर पे गाड़ी आ जाती लेने के लिए, है ना, कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई तो वो लेने आ जाएंगे या घर में आ जाएंगे लेने के लिए। मेरे को टेंशन नहीं है कि मैं वहां जाना है, ठीक है। तो 8 बजे तक हम, क्योंकि 8 बजे वो एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन निकलेंगे, पीक होगी, तो अगर मैं 8 बजे तक साइलेंस में रहता हूं और ये टीम पॉजिटिव रखता हूं तो मेरे हार्मोन्स, वो जो एनर्जी थी वो सातों एनर्जी सारी बॉडी में फैल जाती है, क्योंकि आत्मा की एनर्जी मन के माध्यम से बॉडी में जाती है। और फिर जब टीम बॉडी में चले गई, उसके लिए फिर मैं शुद्ध सात्विक सैर परमात्मा की याद में सैर करते हैं, बातें करते हुए नहीं, बातें करते सैर करने से नुकसान होता है। शुद्ध सात्विक आहार, फल सब्जी अंकुरित दलिया, है ना, रोटी सब्जी दूध, समय पर चबा चबा के खाना, सुबह 7-8 से 9 ब्रेकफास्ट, लंच 1 से 2, डिनर 7 से 8, तो ये तीनों टाइम पे चबा चबा के खाना खाना और चुप होके खाना, बोलते हुए नहीं खाना। और फिर समय पर सोने के पहले अपने आप को ऑडिट कर लो, जैसे बताया ना मोहन भाई ने भी आपको बताया कि समय पर उसमें लेटर लिखो भगवान के नाम, एक सुबह से लेकर रात तक आपने क्या किया, अच्छा और बुरा लिख दो, साइन करके भगवान की याद में बैठो। उसका नंबर है हॉटलाइन, फिक्स नंबर है, क्या नंबर है उसका, 10 डायल करें तो कंट्री सिटी के बाहर जाते हैं, 2 डायल करें तो कंट्री के बाहर जाते हैं, और 3 डायल करें तो वर्ल्ड के बाहर पहुंच जाते हैं। तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज जो सारे में बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, तो मैसेज परमात्मा के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो फिर ऐसे करके फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, फिर उसके बाद 2 मिनट ऐसे, फिर अपने ABCD को रिवाइज करो और फिर सो जाओ, एकदम बढ़िया नींद आएगी। और फिर अगर कोई बीमारी है तो दवाई खा लो, डॉक्टर की दवाई भी लेनी जरूरी ना, ब्लड प्रेशर डायबिटीज की कुछ बीमारी है तो दवाई भी टाइम पे खाओ, रोके मत खाओ, प्यार से खाओ। तो ऐसे सारी बॉडी से जो एनर्जी है, सातों एनर्जी बॉडी के आसपास बाहर आकर इकट्ठी होने लगती है, और यही आपका आभा मंडल बन जाता है, कवच बन जाता है, जो आपको बाहर की खराब बातों से, वातावरण से, पॉल्यूशन से, लोगों गलत भावनाओं से आपको बचाता है, इसको आभा मंडल कहते हैं, ठीक है। जितना ये अभ्यास करते हैं उतना आभा मंडल बड़ा होता जाता है, ओके। इस तरह से आप करेंगे तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी हो जाएंगे। और ये जो है मैं आपको दिखाता हूं, ये लास्ट में कैसे इसके ब्लॉक भी खुल जाते हैं, जो आपको बताया ना बहन जी ने, सारिका बहन ने बताया, ये तो हमने रिसर्च प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ लास्ट में ले जाता हूं। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ये EEG वगैरह जो बताया, ये तो बाद में तो कैसे होता है ये सब आपको बताने का टाइम नहीं रहेगा। हार्मोन्स कैसे बदलते हैं सारा आपने स्टडी किया डिटेल में, और ये दिखाता हूं आपको, देखिए ये 80% ब्लॉक खुल गया है विदाउट एनी एंजियोप्लास्टी, ना, सिर्फ अपने मेडिटेशन करने से और डाइट एक्सरसाइज को परहेज करने से। ये देखिए इतना लंबा ब्लॉक है ना, देखिए खुल गया है, ये देखिए 100% ब्लॉक खुल गया, ये 100% ब्लॉक खुल गया, ये मल्टीपल ब्लॉक सारे खुल गए, ये 80% और 90% ब्लॉक दोनों खुल गए। इस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, दो दीवारें डैमेज हो गई थी, इजेक्शन फ्रैक्शन 30% रह गई सिर्फ, नॉर्मली 60% होती है, ये देखिए वापस 45% हो गई, मतलब हार्ट की मसल भी नहीं बन गई। जो स्टेम सेल थेरेपी करते हैं वो काम, उससे बेटर काम मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। 80% ब्लॉक खुल गया, इस पेशेंट की पंपिंग पावर सिर्फ 20% रह गई थी, जब इसने फॉलो किया देखिए वापस 50% हो गई, हार्ट बिल्कुल दीवारें नहीं बन गई, 100% ब्लॉक खुल गया। कंट्रोल ग्रुप की ब्लॉक सारी बढ़ी है, क्योंकि हर ब्लॉक के पीछे आपके मन के कारण है, सोचने का ढंग है, जब तक आप सोचने का ढंग नहीं बदलेंगे तब तक आपके ब्लॉक खुल नहीं सकते। आप चाहे 0 ऑयल डाइट खाओ, कुछ मर्जी करो, सुबह से शाम तक पैदल करते रहो तो भी आपका ब्लॉक नहीं खुलेगा। तेल खाना बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ भुने हुए चने खाना शुरू कर दो सारा सुबह से लेकर रात तक, और पानी पीना तो भी नहीं ब्लॉक खुलेंगे। जब तक अपने मन को ठीक नहीं करे तब तक आपके ब्लॉक नहीं खुल सकते, ओके। और ये देखिए ब्लॉक बढ़ गया, ये देखिए यहां इस लेडी को 100% ब्लॉक था, ये देखिए पूरी आर्टरी 100% ब्लॉक थी, जब उसने राजयोग मेडिटेशन डाइट एक्सरसाइज से अपने मन को बदला तो देखिए पूरा ब्लॉक खुल गया। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आपकी खाली हार्ट की बात नहीं है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सिरदर्द, एसिडिटी, हड्डियों की तकलीफें,
पेट की खराबी सब ठीक हो जाती है। इसको फॉलो करने से बॉडी मन और तन की हर बीमारी ठीक हो जाती है। इसी को हम थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर कहते हैं। थ्री डायमेंशनल माना आत्मा की केयर, मन की केयर, बॉडी की केयर। तो इसमें स्पिरिचुअल केयर क्या है, बी नेचुरल। जो भी काम करना है अपने को आत्मा समझ के करो, बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस मत हो जाओ। इस आत्मा के सात गुणों को याद रखो और इसके लिए सुबह सुबह उठ के चार बजे मेडिटेशन करो और आनंद की स्थिति को प्राप्त करो, ठीक है। और मेंटल केयर के लिए टीम पॉजिटिव बनाओ अपने, आठ बजे चुप रहो और इसके लिए सात से आठ मुरली सुनिए ताकि आपका एड्रेनल हार्मोन ठीक निकले, बैलेंस में निकले। और ये फिजिकल केयर, सात्विक डाइट खाओ, ईट नेचुरल, ज्यादा फल सब्जियां अंकुरित ज्यादा खाओ। सुबह आठ सुबह सनराइज के बाद, सूर्य उदय के बाद नहा लो, टॉयलेट जाओ, नहा के फिर वॉकिंग के लिए जाओ, 45 मिनट वॉक करो। शाम को सनसेट के पहले आधा घंटा सैर कर लो और 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ और प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। ओम शांति, थैंक यू। ऑक्सीजन उसके बारे में, हम अंधेरे में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं और उल्टा बीमार हो जाते हैं। और पेट साफ करने के बाद ही वॉकिंग करनी चाहिए और हमेशा साइलेंस में करनी चाहिए। बातें करते हुए कर रहे हैं तो आधे फेफड़े में ऑक्सीजन जा रही है, तो हम बेसिकली मतलब हमारे और बॉडी में टॉक्सिन्स भर रहे हैं, राइट। इस आते हैं, इससे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। प्याज लहसुन खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल 6 महीने के लिए कम होता है, किंतु उसको हार्ट अटैक कम नहीं होते बल्कि हार्ट अटैक बढ़ते हैं। तो इसलिए प्याज लहसुन खाने से आपको उत्तेजना पैदा होगी, तामसिक भोजन भी आपके अंदर उत्तेजना पैदा करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करता है। और रासिक भोजन आपके अंदर आलस्य पैदा करता है, पराठा पकौड़ा समोसा गरिष्ठ भोजन जो आपके अंदर आलस्य पैदा करेगा। और तामसिक भोजन आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा, चिंता पैदा करेगा, इनसिक्योरिटी पैदा करेगा, डर पैदा करेगा, राइट। लो फैट हाई फाइबर डाइट, ज्यादा फैट कम रखो और फाइबर ज्यादा, फल सब्जियां अंकुरित ज्यादा मात्रा में खाइए, ठीक है। और चबा चबा खाइए, ये आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है ना, ये आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, ठीक है। ये आपकी ऑक्यूपेशन की मतलब वो है, मतलब वीकनेस कहें या जो भी है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसमें सिर्फ इतना ही, अगर आप रात को ड्यूटी करते हैं तो दिन में ठीक से सोइए फिर आप, हालांकि है गलत, ये भी गलत है, बॉडी के सिस्टम के हिसाब से तो गलत है, किंतु फिर भी आप इसको बच नहीं सकते तो आप इसको उसमें। कई बार लोग क्या करते हैं, दिन में भी रात में भी काम करते, दिन में भी जागते रहते हैं, फिर दिन में सोइए 6 घंटा, है ना। तो निश्चिंत होकर सो जाइए, लगातार सो जाइए। डायबिटीज के लिए देखिए, डायबिटीज से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माता पिता से जीन्स मिलते हैं। कि तो जीन्स एक्सप्रेस कब करते हैं, जब मन में बिटरनेस पैदा कर लेते हैं, मन में कड़वाहट पैदा कर लेते हैं, रिलेशनशिप में, संबंधों में, यार जहां भी काम करते हैं उनमें लोगों के प्रति कड़वाहट मन में पैदा कर लेते हैं, तो डायबिटीज से जीन्स मैनिफेस्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा निकालती है और उसकी वजह से आपको शुगर आपके लेवल ज्यादा बढ़े रहते हैं, इंसुलिन लेवल बढ़ी रहती है। और फिर डायबिटीज के जीन जो 60 साल में जाके मैनिफेस्ट होने चाहिए थे, वो 25 साल में मैनिफेस्ट, 30 साल में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। आप अगर मन से इतना खुश रहें, संतुष्ट रहें, ABCD को याद रखें, डी फॉर ड्रामा। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जो हुआ है, रावण भी आपके घर में हो सकता है, शूर्पणखा भी हो सकती है, और हनुमान भी हो सकता है, मेघनाथ भी हो सकता है, कुंभकर्ण भी हो सकता है ना। और कभी कभी आप भी वैसा रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। एसिडिटी के लिए खुशी अपने जीवन में लाए, खुशी खुशी हैप्पीनेस हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस, जितना खुश रहेंगे आपको एसिडिटी कम बनेगी। टाइम पे खाएं, खाना चबा के खाएं और शाम का भोजन कम से कम करें। शाम को सिर्फ रोटी सब्जी खाएं, शाम को दाल चावल कढ़ी बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। घुटने नए लगवा लें, ठीक है।
ओम शांति।
घुटनों के लिए ईगो ईगो को छोड़ दें, समेटने की शक्ति इस्तेमाल करें, विचारों को समेट के रखें, ज्यादा फैलाए नहीं तो घुटने ठीक रहेंगे। हाँ जी, तामसिक है, मैंने बताया ना। देखिए ना, आप शराब में जान होती है क्या, शराब में जान होती है क्या, चाय में जान होती है क्या, तो फिर पीके उसको आपको अच्छा ऐसा क्यों लगता है, अंदर से दिमाग इलिटेट क्यों लगता है। खा के हैबिचुअल हो जाता है, आप भी हैबिचुअल हो जाते हैं। जो प्याज क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके बगैर भोजन अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट बट आपको अच्छा नहीं महसूस नहीं करेंगे। पर ये देखिए तामसिक डॉक्यूमेंटेड है, स्टडीज है इसके ऊपर, लहसुन प्याज खाने से। इसलिए जो 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 पायलट्स होते हैं ना, एयरलाइंस के पायलट होते हैं, उनको लहसुन प्याज खाने नहीं दिया जाता है, उनको मना किया जाता है, लहसुन प्याज खाने के लिए मना किया जाता है। एटलीस्ट बिफोर फ्लाइट दे कैनॉट हैव ए फूड कंटेनिंग लहसुन प्याज, है ना। उनके लिए आप पूछ लेना, उनके कोड में देख लेना अपन। जो तामसिक भोजन है इसको नहीं खाना चाहिए। अगर आपको गुस्सा करना सीखना है, बिना गुस्सा किए आप बिना गुस्सा के गुस्से में रहना चाहते हैं, तो आप भले खाइए, ठीक है। मेडिसिन तो है, मेडिसिन एंटीऑक्सीडेंट है, पर उसके मैंने बताया 30% बीमारी, मैंने ये बात डिस्कस नहीं किया आपसे हार्ट के बारे में, 30% बीमारी भोजन से आती है, बैड कोलेस्ट्रॉल। 70% आपके लीवर में बनता है, डिपेंडिंग ऑन योर माइंड। अगर आप जल्दी में है, चिंता में है, गुस्से में है, तो आपका लीवर बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगर शांत है, संतुष्ट है, खुश है, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो 70% आपके मन से आ रहा है, 30% बॉडी से, मुंह से जा रहा है। और मुंह में भी क्या जाता है, मन के हिसाब से जाता है। मूड डिसाइड्स योर फूड, राइट। तो आप अपने मूड को ठीक रखें तो आपका मन फूड भी आप फिर देन हम लोग क्या करते हैं, खाने में खुशी ढूंढते हैं और फिर आप हेल्थ के लिए खाना खाते हैं। जिन लोग खाने के लिए जीते हैं ना, कई लोग तो अधिकतर लोग खाने के लिए जीते हैं, और हमें जीने के लिए खाना चाहिए ना, राइट। तो इसलिए आप 70% बीमारी आपकी मन से आ रही है। तो मन को असर कौन क्या कर रहा है, तामसिक फूड, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो आप अपने फूड को सात्विक रखेंगे तो आपका मन शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा, और उससे फिर आपकी बीमारी अपने आप ठीक होगी।